नमस्कार। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तक हमने धर्म के तीन अंगों के बारे में जाना, शील, समाधि और प्रज्ञा। धर्म के परम उपलब्धि तक कैसे पहुंचा जाए, ये भी डिटेल में जाना। अब तो हमारे सामने मार्ग स्पष्ट है। एक प्रवासी जब अपने मार्ग पर निकल पड़ता है तो उस मार्ग पर उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन कठिनाइयों से उसे सहायता कैसे मिले, ये भी वो जान लेता है, ताकि उसका प्रवास सुखदायी बन सके। तो आइए इसी विषय में कुछ और जानकारी पाते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयनका जी से। प्रणाम माता जी। गुरुजी, धर्म के मार्ग पर काफी कठिनाइयां आती होंगी ना?
आती है बेटी, क्योंकि मन को वश में करना है, उसे निर्मल करना है, तो कठिनाइयां तो है ही। वैसे इस मार्ग पर जो कि मन को गहराइयों तक निर्मल करने का काम करता है, तो मन का ऑपरेशन होता है। इसमें तो भीतर तक सुधार करना है, तो भीतर के जो विकार हैं वो फूटेंगे। तो हमारे पांच बड़े बड़े दुश्मन हैं भीतर, हमारे विकार ही हैं और कुछ नहीं है, वो निकलेंगे और हमारे सिर पर चढ़ेंगे, क्योंकि वो जाना नहीं चाहते। तो पहला दुश्मन जो हमारा है वो है राग। सामान्यतया मानो किसी बात पर इतना बड़ा राग न भी हो, लेकिन जब ध्यान करने बैठे तो जोरों से जागा, इसके प्रति राग जागा, उसके प्रति जागा, इस वस्तु के प्रति, इस व्यक्ति के प्रति, सांसारिक राग। केवल सांसारिक राग ही नहीं, धीरे धीरे ये अलग हो भी जाए तो अब साधना संबंधी राग जागा। अरे औरों को तो साधना करते हुए ऐसी ऐसी अनुभूति होती है, मुझे तो हुई नहीं, तो वैसी अनुभूति चाहिए रे, वैसी अनुभूति चाहिए रे। ये दुश्मन सिर पर सवार हो गया, उसको धीरे धीरे दूर करना है। दूसरा दुश्मन जैसे राग है वैसे द्वेष का दुश्मन। तो पहले तो वो सांसारिक बातें, सामान्यतया किसी के प्रति इतना द्वेष न भी हो पर दबा हुआ द्वेष है किसी के प्रति, जागेगा जोर से, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कर दिया, अब उसके खिलाफ द्वेष जागता है, दुर्भावना जागती है। फिर समझाता है अपने आप को, अरे बाबा हम यहाँ ध्यान करने आए, क्या करने लगे, उसे दूर करता है। तो सांसारिक बात अलग, अब साधना संबंधी बात उठे। औरों को तो न जाने कैसी अनुभूतियां हो रही है, मुझको तो ये पीड़ा ही पीड़ा, बैठता हूं तो पीड़ा, खड़ा होता हूं तो पीड़ा, चलता हूं, ये क्या है, द्वेष ही द्वेष, द्वेष ही द्वेष। ये दूसरा दुश्मन सिर पर सवार हो गया। और दो दुश्मन हैं, दुश्मन और कोई नहीं, हमारे मन के विकार हैं। ये विकार आए थे मेहमान बनकर, फिर मेहमान नहीं रहे, घर के मालिक हो गए, अभी निकलना नहीं चाहते। और ये खूब जानते हैं कि ये साधना करेगा तो हमको निकलना ही होगा, तो इसकी साधना बंद कराओ। तो एक साधना बंद कराने का एक तरीका ये, भीतर से दुलत्ती मारो, काम बंद कर दे। तो एक दुलत्ती तो ये कि खूब आलस आएगा, रात को सोया है, नींद की भूख नहीं है, लेकिन जैसे ही ध्यान करने बैठा वैसे ऊँगने लगा, आलस आएगा, प्रमाद आएगा, निद्रा आएगी, तंद्रा आएगी, बड़ा दुश्मन है, काम नहीं करने देगा, हम सजग कैसे रहेंगे। किसी तरह से इसका सामना कर लिया तो एक और दुलत्ती लगती है, जैसे वो आलस और निद्रा में डुबोता है, ऐसे अब ये बेचैनी में व्याकुल बना देगा, कुछ काम करने को जी नहीं चाहेगा, साधना तो बिल्कुल करना नहीं चाहेगा, छोड़ इसको, उससे जरा बतिया लें, ये थोड़ा सा काम कर लें, कोई ना कोई काम करने को जी चाहेगा साधना छोड़ करके। तो ये बेचैनी बड़ा दुश्मन है। एक पांचवा दुश्मन और है कि जब संदेह होता है, अरे क्या करना, क्या कर रहा हूं मैं, ये भी कोई साधना है, सांस को देखो, सांस को देखो, क्या कर रहे हैं ये लोग, इससे क्या मिलेगा। और फिर अब विपश्यना करने लगे तो शरीर को देखो, ये नश्वर है, अरे हम जानते हैं नश्वर है भाई, भिन्न भिन्न प्रकार के संदेह जागेंगे। ये जो संदेह की बात कही, शक होने की बात कही, तो इसमें मुझे अपना अनुभव याद आता है। जब मैं अपने गुरुदेव से पहले पहल मिलने के लिए गया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तुम्हारे देश की एक ऊंची अध्यात्म विद्या सिखाएंगे, उसे विपश्यना कहते हैं। विपश्यना, ये नाम ही कभी नहीं सुना। घर आकर के जो मेरे पास हिंदी डिक्शनरी थी उसे देखा, विपश्यना शब्द नहीं। जो संस्कृत डिक्शनरी थी, जो भी थी मेरे पास, उसमें विपश्यना शब्द नहीं। अरे हमारे यहाँ तो ये शब्द लुप्त हो गया, तो विद्या तो लुप्त होनी थी, ये क्या विपश्यना है? बिल्कुल नई सी बात, इतनी पुरानी बात हमारी, लेकिन फिर भी बिल्कुल नई सी बात जैसे मुझे लगी, ऐसे अनेकों को लगती है। तो ये संदेह एक बहुत बड़ा दुश्मन हमारा। हम सामना करेंगे, ये आए कठिनाइयां तो हम बल भी आएगा हमारे अंदर, हमारे मित्र भी हमारे साथ, हम सामना करेंगे, इन कठिनाइयों को दूर करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे।
जी गुरु जी, आपने अभी हमें 5 दुश्मनों के बारे में बताया, मित्रों के बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे।
जरूर,
लेकिन फिलहाल समय होता है एक विराम का। ऊर्जा में आप सभी का फिर से स्वागत है। गुरुजी, पिछले हिस्से में आपने 5 दुश्मनों के बारे में बताया, तो क्या इस मार्ग पर हमारे कोई मित्र भी हैं?
है बेटी, जैसे 5 दुश्मन हैं, वैसे 5 मित्र भी हैं। इन 5 दुश्मनों से लड़ने के लिए ये 5 मित्र बड़े सहायक। शक होता है, संदेह होता है, तो एक मित्र हमारा श्रद्धा। श्रद्धा हो, मार्ग पर श्रद्धा हो, समझे, खूब अच्छी तरह समझे कदम कदम ये मार्ग कहाँ ले जा रहा है। कोई शंका हो तो अपने मार्गदर्शक से निवारण कर ले, पर श्रद्धा आवश्यक है। मानो किसी देवी पर भी, देवता पर भी, ईश्वर पर भी, ब्रह्म पर भी, बुद्ध पर भी, महावीर पर भी, ईसा मसीह पर, पैगंबर, किसी भी पर भी श्रद्धा हो, अंधश्रद्धा ना हो। अंधश्रद्धा कब होती है? जब काम तो हम कुछ करेंगे नहीं, अब जिस पर श्रद्धा है वो हमें तार देगा, उसकी बड़ी कृपा हो जाएगी हम पर, तो बात नहीं बनती। काम करना है, साथ साथ ये समझे और श्रद्धा रखे। एक घटना याद आती है मुझे, एक शिविर में एक बुढ़िया माई आई, बड़ा अनुकूल लगा उसे, सारा शिविर इतना अच्छा लगा, उसके परिणाम आने लगे, घर जाकर भी सुबह शाम करती है, बहुत प्रसन्न। साल भर के बाद वहाँ शिविर फिर लगा, फिर आई और कहने लगी, मुझे इस मार्ग से इतना लाभ हुआ, इसीलिए मैं फिर आई हूँ एक बार। लेकिन गुरुजी, संदेह होता है, एक कहते संकोच तो होता है, लेकिन कह दो, कहो बेटी, काहे नहीं कहो। तो कहती है कि आपको एक ज्ञान मार्ग है और मैं तो बचपन से भक्ति मार्ग में पली, मेरी जो श्रद्धा है अपनी देवी पर, देवता पर, मैं पूजा करती हूँ, और जो भक्ति का काम करती हूँ वो सारे की सारी छूट जाएगी। अरे नहीं छूटेगी, वो बलवान होगी और शुद्ध हो जाएगी, नहीं मानती। तो हमने उससे प्रश्न किया, अच्छा सचमुच तुझे भक्ति है, सचमुच श्रद्धा है अपने देवी पर कि देवता पर? क्या कहते हैं, खूब श्रद्धा है। तो कभी कभी ऐसा नहीं होता कि घर में कोई बीमार पड़ गया तो तुम मनोती नहीं मनाती कि हे देवी जी, हे देवता जी, मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मेरे पति को ठीक कर दे, तो मैं आपको 5 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, ऐसा मनोती मानती हो ना? ये तो बार बार मनाते हैं, ये तो हमारी परंपरा में है, इसमें क्या बुरी बात है? अरे तो 5 रुपये का प्रसाद कब चढ़ाएगी? वो जब ठीक कर देगा, इतना नहीं चढ़ाएगी। तो तुझको अपने देवी पर, देवता पर 5 रुपये का भी विश्वास नहीं तो श्रद्धा है कहाँ तेरे पास? ये तो दुकानदारी वाली, बनिए वाली बात हुई, एक हाथ दे तो दूसरे हाथ ले, पहले दे फिर ले, यही होता है बेटी श्रद्धा के नाम पर। जब सही श्रद्धा जागती है, समझदारी के साथ जागती है, बड़ा कल्याण होता है। बात समझ में आ गई, अब मुझ में श्रद्धा है इस रास्ते पर चलने के लिए, तो कदम कदम चलते ही चले जाएंगे, सारी शंकाएं एक और धरी रह जाएंगी। तो ये बड़ा मित्र हमारा, ये बलवान बने, बड़ा कल्याण हो। बेटी श्रद्धा जब अंधश्रद्धा बन जाती है तो बड़ी खतरनाक होती है, और अक्सर यही होता है। एक उदाहरण से समझो, मेरा अपना पुत्र, मैं कहूँ देखो ये रास्ते चलो, इससे तेरा कल्याण होगा, मंगल होगा, दुखों से मुक्ति होगी, एक कदम नहीं चले। मैं जैसा कहूँ उससे बिल्कुल विपरीत, अलग दिशा में चले, कितना ही समझाओ नहीं समझे, लेकिन सुबह सुबह आए और हाथ जोड़ करके, बापू जी थारो कमल जिसो मुंह थारी, कमल जिसी आंखें मारो, चांटा उठा के मूर्ख कहेंगे क्या टेंटे लगाई है। मैं कहूँ वो काम तो करे नहीं और प्रशंसा करे, अरे एक साधारण आदमी को कोई ठग नहीं सकता, और हम जिसको परम पिता परमात्मा कहते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, घट घटवासी कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसको उल्लू बनाने चले हैं कि उस तारी प्रशंसा कर देंगे और तू तार देगा हमें। हम कुछ नहीं करेंगे, तेरे बताए रास्ते पर एक कदम नहीं चलेंगे। आखिर तू किस लिए है? तारने के लिए ही है ना। तो एक कवि कहता है कि अपनी ही करनी जो मैं तरूं तो मैं करतार, करतार तुम कहेगे। तो ईश्वर से कहता तू काहे का करतार, मैं करनी मेरी हजार हो खराब फिर भी तू तार देगा। तो ऐसी श्रद्धा अंधश्रद्धा होती है। बस इस तरह की अंधभक्ति जब चलती है तो धर्म लुप्त होता है, आदमी धर्म के रास्ते आगे नहीं बढ़ पाता। तो धर्म के रास्ते आगे बढ़ना है तो श्रद्धा आवश्यक है धर्म के प्रति, मार्ग के प्रति, विधि के प्रति, लेकिन अंधश्रद्धा न हो इसके लिए सजग रहना होता है।
जी गुरु जी, गुरु जी आपने हमें पांच मित्रों में से श्रद्धा के बारे में जानकारी दी, बाकी के जो चार मित्र हैं उनके बारे में हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे
अवश्य,
लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरु जी पिछले हिस्से में आपने हमें श्रद्धा के बारे में जानकारी दी, अब जो आगे के चार मित्र हैं उनके बारे में बताएंगे।
अवश्य बेटी, अगला मित्र है हमारा परिश्रम, पुरुषार्थ, पराक्रम, वीर्य। श्रद्धा तो बहुत हो लेकिन चले नहीं एक कदम भी तो अंतिम लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? कदम कदम चलना होगा, श्रद्धा हमें बल देगी, रास्ता बिल्कुल ठीक है, हमें पूरा विश्वास है हम पहुंचेंगे, लेकिन चलना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत मेहनत है। और कामों में जितनी मेहनत करनी पड़ती है इसमें उससे कई गुना अधिक मेहनत है। हमारे यहाँ एक संत ने कहा, शूर संग्राम है ओ घड़ी दो चार का, सती संग्राम पल एक भाई, संत संग्राम है रात दिन जूझना, देह पर जंत का काम भाई। क्या कहा? शूर संग्राम है। एक योद्धा जब संग्राम भूमि उतरता है तो घड़ी दो घड़ी चार घड़ी खुद मर जाएगा या दुश्मन को मार देगा, संग्राम खत्म हुआ, उतना ही संग्राम है उसका। लेकिन जो संत का संग्राम है, संत संग्राम है रात दिन जूझना, अपने से लड़ाई लड़नी है। बार बार कोई विकार जागता है उसे दूर करता है, विकार जागता है दूर करता है, खूब सजग रहता है, और ये काम देह पर्यंत का जब तक जीवित है तब तक ये काम करता ही रहना पड़ेगा। ये हमारा मित्र परिश्रम वाला, पुरुषार्थ वाला, पर ठीक से करे, ठीक से नहीं करे तो परिश्रम का फल नहीं आए। खूब समझदारी के साथ, विवेक के साथ, कैसे हमको मेहनत करनी है, कैसे परिश्रम करना है, उसे समझ समझ करके कदम कदम आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये बहुत आवश्यक है।
जी गुरु जी, और हमारा अगला मित्र कौन है?
अब इसके बाद और मित्र हमारे, अगला मित्र हमारा है सती, कहते हैं उसे, पुराना शब्द है। सती माने स्मृति, लेकिन इस अर्थ में भी साधना में प्रयोग नहीं होता, किसी को याद नहीं करना है। सती का अर्थ उन दिनों की भाषा में होता था सजग रहना, जागरूक रहना। तो किसके प्रति सती? अगर किसी का स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं उसको, तो करते चले जाएं, हम एक कदम भी आगे नहीं जाएंगे। हमको सजग रहना है, अपने चित्त के बारे में प्रतिक्षण सजग रहेंगे, कहीं ये प्रतिक्रिया तो नहीं करने लगा, कहीं ये राग तो नहीं जगाने लगा, कहीं ये द्वेष तो नहीं जगाने लगा, जगाया कि उसको फिर ठीक करना है। यूं अपने प्रति सजग रहने को सती कहते हैं। ये हमारा तीसरा मित्र।
और गुरु जी चौथा मित्र?
अब ये सती कितनी देर चलती है, हम सजग कितनी देर रहते हैं, ये क्षण आया हम सजग हैं, अगला क्षण आया हम सजग हैं, यूं क्षण प्रतिक्षण जितनी देर तक हम सजग हैं, तो वो सती समाधि में बदल गई। वो समाधि हमारी, हमारा मन सच्चाई पर एकाग्र है, अपने बारे में जो सच्चाई है उसके प्रति सजग रहते 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 एकाग्र हो रहा है, तो यह हमारी समाधि सम्यक समाधि हुई, बहुत काम की समाधि हुई। यह हमारा चौथा मित्र।
और गुरु जी हमारा पांचवा मित्र।
पांचवा मित्र बड़ा महत्वपूर्ण मित्र, प्रज्ञा। कोई सामान्य ज्ञान नहीं, प्रज्ञा। एक तो श्रुत प्रज्ञा, सुन लिया उपदेश, सुन लिया प्रवचन, सुन लिए हाँ मैं जान गया, जाना कुछ नहीं, मान लिया। जिसे सुना है उस पर श्रद्धा है, जो शास्त्र पढ़ा है उस पर श्रद्धा है, तो श्रद्धा के मारे मान लिया, वो श्रुत प्रज्ञा नहीं। ऐसे ही चिंतन मनन करेगा, जो बात कही वो ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, इतनी बात तो ठीक है, तो ये जो चिंतन प्रज्ञा है वो भी नहीं। भावनामय प्रज्ञा, अनुभूति हो, एक घटना हो रही है भीतर ही भीतर अनुभवित हो रही है, वो बार बार घटना होती है, बार बार अनुभवित होती है, तो भावित हो, भावित हो, बहुलीकत हो, बार बार उसको अनुभव करते करते अपना भीतर का ज्ञान जानता है, अपना ज्ञान है वो, बाकी तो परोक्ष ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो प्रज्ञा हुई। एक प्रज्ञा का और अर्थ होता है प्रकारेण जानाती थी प्रज्ञा, प्रकार प्रकार से जानता है, एक ही दृष्टि से देखे तो सच्चाई संपूर्ण सच्चाई नहीं मालूम होती, भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखे, इसी को कहा अनेकांत दृष्टि से देखे, अलग अलग आयाम से देखे तो बात समझ में आए। किसी अंधे आदमी को हाथी दिखाए, पांव ही देखा केवल, तो क्या समझेगा हाथी क्या है, उसने दांत देखे केवल तो क्या सारा देख लिया, तो वो ऐसा हाथी है। तो इसी तरह से भीतर की सच्चाई को भिन्न भिन्न आयाम से हम समझे, यूं भिन्न भिन्न तरीके से देखते देखते अपने आप को सुधारता है। सुधारता यही है कि समता में स्थापित होता है। प्रज्ञा है कि नहीं है उसको मापने का मापदंड इतना ही है कि मन हमारा समता में स्थापित है कि नहीं है। साधना में ऐसा करे फिर जीवन में उतारे उसको, तो प्रज्ञा सही प्रज्ञा, काम की प्रज्ञा हुई। इसलिए सारा काम कर रहे हैं कि भीतर ही भीतर प्रज्ञा में पुष्ट होते 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 उसको जीवन में उतारने लगे, तो फिर देखेंगे ये पांचवा मित्र बड़े कल्याण का मित्र, ये तो हमारे सारे जीवन भर काम आएगा।
शुक्रिया गुरु जी, आपने हमें श्रद्धा, परिश्रम, सती, समाधि और प्रज्ञा के बारे में, इन पांच मित्रों के बारे में जानकारी दी। आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन वक्त होता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सबका ऊर्जा में स्वागत है। दर्शकों, हमारे शो का सेक्शन आप ही के प्रश्नों पर आधारित है। गुरु जी, पहला प्रश्न पूछ रही है सीमा जी बैंगलोर से। वो पूछती है कि अब तक जितने लोग मुक्त हुए हैं क्या वे सब विपश्यी थे?
कैसे कहें बेटी, पहली बात तो ये कि कौन मुक्त हुआ और कौन नहीं मुक्त हुआ। मुक्त उसी को मानेंगे जिसने अपने मानस के सारे विकार बाहर निकाल दिए, जड़ों तक के। जैसे पेड़ को काट दे उसमें जड़ है, फिर नए पेड़ उगेंगे। तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन व्यक्ति सचमुच मुक्त हुआ कौन नहीं हुआ। एक ही मापदंड है कि सारे विकार उसके निकल गए कि नहीं निकल गए। अब सारे विकार निकलने हैं तो उसको विपश्यना को या चैस को नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने भीतर शरीर और चित्त के पारस्परिक संबंधों को अनुभूतियों से देखते हुए, जानते हुए, संवेदनाओं के आधार पर काम करता है तो जड़ों तक पहुंच गया, सुधार जड़ों तक होने लगा। जैसे अपने यहाँ नरसिंह मेहता बड़े भक्त हुए, जब उनकी वाणी पढ़ी तो देखा उसमें लिखा है शरीर शोधे बिना सार नहीं सांपड़े। शरीर में शोध किए बिना, अनुसंधान किए बिना, सच्चाई को खोज किए बिना सार नहीं मिलता। सार तो तब मिला जब अपने भीतर खोज करने शुरू की। अब भले विपश्यना न कहे उसको, लेकिन उसने काम ऐसा किया तो परिणाम आया कि उसी के मन से ये उद्गार निकलते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए ये पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न आने रे। तो सुधर गया ना अंदर तक, तो हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि इस व्यक्ति ने अंदर की सच्चाई देख करके मुक्ति प्राप्त की। हम नहीं कह सकते कि सचमुच सारा का सारा विकार निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, लेकिन अंतर्मुखी होकर काम तो करना शुरू किया, तो ऐसा व्यक्ति सचमुच मुक्त होगा।
शुक्रिया गुरु जी, आपने बहुत अच्छा समझाया। गुरु जी, दूसरा प्रश्न पूछ रही है वीना जी ग्वालियर से। वो पूछती है आप कहते हैं वर्तमान में जीना चाहिए, उससे हमारे जीवन में क्या लाभ होगा?
जीवन में लाभ हो इसीलिए वर्तमान में जीना है, अगर लाभ ना हो तो हम क्यों ये सारी भाग दौड़ करें। वर्तमान में जीने का प्रयत्न करो, सीखो इस विद्या को, बहुत लाभ होता है। हम वर्तमान में कदम रख करके, ये नहीं कि भूल जाएंगे भूतकाल को, याद करेंगे कि ऐसी परिस्थिति में, इस तरह की अवस्था में हमने क्या स्टेप उठाया था, ठीक था कि गलत, उसे सबक लेंगे और ठीक तरह का कदम उठाएंगे। भविष्य में अगला कदम हमको क्या उठाना है, इसके लिए प्लानिंग करेंगे, अंधे नहीं रहेंगे, पर दूर तक की बातें सोचते चले जाएंगे, अपनी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। तो वर्तमान में कदम रखकर हम पीछे की बात को भी याद करेंगे, आगे की प्लानिंग भी करेंगे, वर्तमान की धरती पर से पांव नहीं हटाएंगे।
शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए ऊर्जा। नमस्कार। में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पिछले एपिसोड में गुरुजी ने हमें धर्म का जीवन जीने में बाधक बनने वाले 5 दुश्मनों और सहायक बनने वाले 5 मित्रों की बात बताई। दर्शकों अगर आप एक बात पर गौर करें तो दुश्मन और मित्र दोनों ही मन के अंदर ही होते हैं। ये सब मन के स्वभाव और गुणों की बात है। ये तो मन से ही मन को सुधारने की बात हुई ना। क्या वाकई में मन में इतनी शक्ति होती है? क्या यह संभव है? आइए यही प्रश्न पूछते हैं हमारे गुरुजी श्री गोयनका जी। पिछली बार आपने दुश्मनों और मित्रों की बात की, उस बात से तो यही जाहिर होता है कि ये सब हमारे मन का स्वभाव है।
बिल्कुल।
मन को मनी से बदलना होगा। तो फिर गुरुजी ये कैसे संभव है?
विपश्यना इसीलिए की जाती है बेटी, कैसे मन को मन से बदलें। इस समय तो ऐसी हालत है कि मन का बहुत छोटा सा हिस्सा काम करता है। पश्चिम के वैज्ञानिकों ने भी ये बात स्वीकार की कि मन का कोई 10% हिस्सा काम करता है, लेकिन अगर 100% हिस्सा काम करने लगे, इसकी ताकत का क्या ठिकाना। तो वो कहते हैं कॉन्शियस माइंड, हाफ कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। हमारे देश के महान वैज्ञानिक भगवान बुद्ध ने ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल किए। अनकॉन्शियस कुछ है ही नहीं, कॉन्शियस है, लेकिन एक दीवार है, ऊपर ऊपर का चित्र बहुत छोटा सा है। इसको उन्होंने परित चित्त कहा, परिमित है, छोटा सा है, और बाकी सारा का सारा बहुत बड़ा हिस्सा है, और इन दोनों के बीच में दीवार है। ये जो महत्तर हिस्सा है, बड़ा हिस्सा है, और ये जो ऊपर का परित छोटा सा परिमित हिस्सा है, इनके बीच की दीवार टूट जाए तो अपने आप पूरा का पूरा मानस काम करने लगा, सारा का सारा कॉन्शियस हो जाए, सुपर कॉन्शियस हो जाए, तो भीतर की जितनी सच्चाइयां हैं उनको अनुभूति से जान करके उसे सुधारना शुरू कर दे, बाहर की जो सच्चाइयां हैं उनको भी गहराई से जानने लगे, केवल ऊपर ऊपर की बात नहीं। तो ये मन की शक्ति बढ़ाने के लिए ही ये साधना दी कि हम किस प्रकार केवल परित चित्त पर काम करके न रह जाएं, हम इसको महत्तर चित्त तक, बड़े चित्त तक, सारे के सारे चित्त तक हम जाएं। तो मन के द्वारा ही हम धीरे 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 आगे जाएंगे, जैसी ये विधि सिखाती है, तो उससे एकदम पैदे तक पहुंच जाएंगे, रूट तक पहुंच जाएंगे, जहां से मन अपना काम शुरू करता है, जहां से विकार जागते हैं, जहां उनका उद्गम होता है, वहां तक पहुंच जाएंगे, सुधार वहां शुरू हो जाएगा। ये सारा काम मन ही करेगा।
गुरु जी हमारे रोज के जीवन में किसी एक काम पर मन को टिकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो क्या मन को वश में करना संभव है?
संभव है बेटी। पहले इतने बात तो समझ ले
कि अपने मन को वश में किए बिना हम अपने आप को सुधार नहीं सकते, क्योंकि सारे काम मन से ही आरंभ होते हैं। मनोपुबंगमा धम्मा, पहले मन जागता है उसके बाद सारे काम होते हैं शरीर की वाणी के। तो ये बात तो निश्चित है कि हमको अपना मन सुधारना है। वैसे भी अपने यहाँ कहाँ गया कि सारे का सारा जो काम है बंधन का, मन एव मनुष्यानाम कारणं बंधमोक्षये, बंधन का कारण भी मन है और मोक्ष का उपाय भी मन है। अब इसको प्रयत्न पूर्वक उसे काबू करने का काम शुरू करें, काम करे तो मन वश में आने लगता है। ऐसी बहुत घटनाएं हैं किस तरह से लोगों ने अपने मन को वश में किया, पुराने समय में, आज भी करते हैं। एक व्यक्ति जो कि हाथियों को वश में करने का ही धंधा करता था, विकराल से विकराल हाथी, जंगली हाथी, मतवाले हाथी, उनको कैसे वश में करे, यही उसका पेशा था। एक बार मन में आया कि इन हाथियों को मैं वश में करता हूं, मेरा मन तो वश में है ही नहीं और मेरा कल्याण तो मन को वश में करने से है, तो मैं क्यों ना अपने मन को वश में करने की कोशिश करूं। कोशिश करता है सफल नहीं होता, कोशिश करता है सफल नहीं होता। फिर बात समझ में आई कि जैसे मैं हाथी को वश में करने के लिए क्या क्या उपाय करता हूं, कहां जरा ढील छोड़ता हूं, कहां जरा खींचता हूं, ओ ये सारी बातें हम मन पर भी तो लागू होती है। वो मतवाली हाथी को किस तरह से अकलमंदी के साथ, समझदारी के साथ वश में करते हैं, ऐसे ही इस मतवाले मन को वश में करेंगे। वो मतवाला हाथी वश में नहीं है तो हमारे लिए बड़ा खतरनाक है, लेकिन वश में आ गया तो हमारा सेवक हो गया, हमारा गुलाम हो गया। ऐसे ही मन जब तक वश में नहीं है तब तक बड़ा खतरनाक है, तो समझदारी के साथ इसको वश में कर लो, ये हमारा गुलाम हो जाएगा। वश में कर ही लिया। और आज भी बेटे इतने लोग आते हैं साधना करने, कठिनाई तो होती है पर प्रयत्न करते 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 मन में वश में कर लेते हैं, कर ही लेते हैं।
शुक्रिया गुरुजी। ये जो मन को वश में करने की बात है इसके बारे में आपसे और जानकारी पाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी, हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती है जिनका मन पर काफी गहरा असर होता है दूसरे व्यक्तियों की वजह से, क्योंकि वो हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं, तब क्या करें?
यूं लगता है कि हम व्याकुल इसलिए हुए किसी अन्य व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, बाहर की घटनाओं की वजह से हम व्याकुल हुए। ऊपर ऊपर से तो बात सच है, लेकिन अपरेंट ट्रुथ है, ऐसा प्रतीत होता है। जिस दिन अपने भीतर सच्चाई को देखने की विद्या में परफेक्ट हो जाएंगे, उस दिन साफ मालूम होने लगेगा कि हम जब दुखी होते हैं तो हमारे दुख का 100% कारण हमारे भीतर है, हम जिम्मेदार हैं। ठीक इसी प्रकार हमारे सुख का 100% कारण हमारे भीतर है, हम जिम्मेदार हैं। एक उदाहरण से समझे, किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति ने बहुत हानि पहुंचाई तो वो व्याकुल हुआ, कोर्ट में गया, एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट, यूं करते करते सुप्रीम कोर्ट तक गया तो 7 वर्ष लग गए। और अंत में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस फैसला देता है कि सारे मामले में तेरा कोई कसूर नहीं, उसी आदमी का कसूर है, उसे दंड मिलना चाहिए और उसे दंड मिलता है। अब ये सोचता है कि मेरा जब कोई कसूर ही नहीं था तो भाई ये कुदरत का भी तो कोई कानून है, ये परमात्मा का भी तो कोई न्याय है, हमारा कसूर ही नहीं था तो 7 वर्षों तक मैं क्यों तड़पता रहा, रात की नींद हराम हो गई, दिन का खाना हराम हो गया, बेचैनी ही बेचैनी, कैसा जीवन मेरा, ऐसा दंड मुझको क्यों मिला? होश जागेगा तो समझ में आएगा कि ये जो 7 वर्ष तक मैं तड़पता रहा, अपने भीतर विकार जगाता रहा। जब उस घटना को याद करूं और तभी मन में द्वेष जगाऊं, दुर्भावना जगाऊं, व्याकुल हो जाऊं, दुर्भावना जगाऊं, व्याकुल हो जाऊं, तो ये व्याकुलता का जिम्मेदार मैं हूं, दूसरा कौन होगा? बहुत बार ऐसे होता है किसी आदमी ने गाली दी, व्याकुल हुआ, कहता इस आदमी ने गाली दी इसलिए मैं व्याकुल हुआ, इसने मेरा अपमान किया इसलिए मैं व्याकुल हुआ, और कभी कभी तो ऐसा कहता है कि इसने इतना अपमान किया कि मैं जन्म भर नहीं भूलूंगा। मत भूलना, किस पर एहसान करोगे, सारे जीवन भर व्याकुल होते चले जाओगे। जब जब इस घटना को याद करोगे तब तो व्याकुल ही होगे, व्याकुल ही होगे, खुश नहीं है तो यही करता है। कभी कोई अपने नासमझे में कहता 7 जन्म तक नहीं भूलूंगा, अरे मत भूलना भाई, 7 जन्म तक किस पर एहसान करोगे, 7 जन्म तक तड़पते रहोगे, क्योंकि भीतर देखा नहीं। ये कुदरत के कानून को जब तक नहीं समझेंगे तब तक व्याकुलता ही व्याकुलता है। कुदरत इस बात को नहीं देखती कि ये व्यक्ति कौन है, जिस व्यक्ति ने अपने मन को मैला किया, हिंदू है, मुस्लिम है, जैन है, सिख है, कुछ नहीं देखती। मन को मैला किया व्याकुल होना ही पड़ेगा। हिंदू हो या बौद्ध हो, मुस्लिम हो या जैन, जब जब मन मैला करे तब तब हो बेचैन, होना ही पड़ेगा बेचैन। नियम है प्रकृति का। मन को मैला किया ना, उसमें क्रोध जगाया, द्वेष जगाया, ईर्ष्या जगाई, अहंकार जगाया, व्याकुल होगा ही। इतना होश अपने भीतर अनुभव करते करते देख, ये आग है, इस पर हाथ रखते जलेंगे, एक बार जला, दो बार जला, हाथ नहीं रखेगा। व्याकुल इसलिए होता हूं कि मैं विकार जगाता हूं। तो भाई ये मन का खेल है, इसको अनुभूति से समझे। मन ही दुर्जन मन सुजन, मन बैरी मन मीत, जीवन में मंगल जगे जब मन हो ये पुनीत। इसको पुनीत करना सीखे, ये विद्या पुनीत करती है, तो मैल नहीं रहता, तो दुर्जन मन सुजन हो जाता है, जीवन सुख से भर जाता है। ये व्याकुलता अपने आप दूर हो जाती है। काम करना पड़े अपने भीतर सच्चाई को देखते देखते मन को बदलना है, और बदल सकता है।
शुक्रिया गुरु जी। तो दर्शकों, अभी गुरु जी ने हमें बताया कि हम ही हमारे सुख और दुख के जिम्मेदार होते हैं। इसी बात पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे शो ऊर्जा में। गुरु जी, ये बात तो स्पष्ट हुई कि अच्छा या बुरा बनना ये हम पर ही निर्भर होता है।
बिल्कुल।
तो इसलिए हमें जो कुछ करना है वो भीतर से ही करना है, ऐसा ही है ना गुरु जी?
बिल्कुल ठीक। मन को मैला हमने बनाया तो उसको सुधारने का काम हमें करना पड़ेगा, कोई दूसरा कैसे करेगा। ये बात जिस आदमी के जितनी जल्दी समझ में आ गई उतनी जल्दी वो अपने सुधारने का काम शुरू कर देगा। कठिनाई ये होती है कि आदमी खुद काम करना नहीं चाहता और आशा करता है वो कर देगा, अमुक शक्ति है, अमुक देवी है, अमुक देवता है, या हमारा गुरु महाराज है, उसकी कृपा हो जाएगी, हम एकदम सुधर जाएंगे। हम चाहे जितना बुरा काम करते चले जाएंगे, हम पर किसी की कृपा हो जाएगी। ये पागलपन जिस आदमी के सिर पर से, मन पर से जितनी जल्दी निकल जाए उतना उसका कल्याण हो जाए। एक घटना बताएं, भगवान बुद्ध के जीवन काल की घटना। एक बहुत बड़ा केंद्र उनका श्रावस्ती में, जहां पर बहुत भिक्षु भिक्षुणिया और बहुत बड़ी संख्या में गृहस्थ पुरुष और नारी वहां पर साधना सीखने के लिए आए, भगवान उनको सिखाए। कुछ लोग ऐसे भी कि जब शाम के समय वो प्रवचन देते हैं तो केवल प्रवचन सुनने आ जाए। ये भारत की बहुत पुरानी बीमारी रही है। धर्म सुनना बुरी बात नहीं है, लेकिन धर्म इसलिए सुनना चाहिए कि उससे प्रेरणा जागे और हम फिर धर्म धारण करने के काम में लग जाएं। लेकिन उसको बुद्धि विलास का विषय, वाणी विलास का विषय, एक मनोरंजन का विषय, दिन भर बहुत थके मांदे हैं, शाम को चलो जरा प्रवचन सुन ले धर्म का, एक मनोरंजन हो जाएगा, माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे। ये पागलपन कब से चला आ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे, उनमें का एक भाई एक दिन जरा जल्दी आ गया और देखा कि भगवान बुद्ध अकेले बैठे हैं, बड़ा खुश हुआ। उनके पास आया कि भगवान, हमारे मन में बार बार एक प्रश्न उठता है, लेकिन बहुत लोग होते हैं तो संकोच होता है, आज आप अकेले मिल गए तो मैं पूछ लो। भगवान ने कहा जरूर पूछो, प्रश्न ये है भगवान कि मैं देखता हूं आपके पास इतने लोग आते हैं, इनमें से कुछ तो बिल्कुल परम मुक्त अवस्था पर पहुंच गए, अनंत हो गए, साफ मालूम होता है। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत सुधर गए, पहले से बहुत बड़ा सुधार आ गया, अभी तक अनंत नहीं हुए, मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंचे। और महाराज ऐसे भी हैं जैसे मैं हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ा, वैसे के वैसे हैं, ऐसा क्यों होता है। तो फिर समझाया, और उनका जरा समझाने के तरीके अनेक होते थे, उसमें एक तरीका यह भी था कि प्रश्न करने वाले से प्रति प्रश्न करते थे, उसी से प्रश्न करते थे। तो इससे प्रश्न किया, अरे भाई तुम कहां के रहने वाले हो? कहता है श्रावस्ती का। नहीं, तेरा चेहरा मोहरा कहता है तू श्रावस्ती का नहीं है, तू कहीं और का रहने वाला है और यहां आके बस गया। हाँ महाराज, ये ठीक कहा आपने, मैं वैसे मगध देश का रहने वाला हूं, राजगिरी का रहने वाला हूं, बरसों हो गए यहां आके बस गया। तो तू यहां आके बस गया तो अब राजगिरी से तेरा संबंध टूट गया बिल्कुल, वहां आना जाना नहीं होता। संबंध नहीं टूटा महाराज, वहां तो अभी हमारे परिवार के लोग भी हैं, रिश्तेदार हैं, मेरा व्यापार भी है वहां, तो कई बार मुझको आना जाना होता है वहां पर। अच्छा, तुम बहुत बार आते जाते हो, बहुत बार आते जाते हो तो श्रावस्ते लेकर राजगिरि तक का रास्ता तो खूब जानते हो। खूब जानता हूं महाराज, इतने बार चला हूं उस पर। एक बात और बताओ, यहां आए इतने वर्ष हो गए, अनेक लोगों से तुम्हारा परिचय हो गया, और जिनसे परिचय हो गया उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत घनिष्ठ हो गए। जो घनिष्ठ हो गए वो तो इस बात को जानते हैं कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, राजगिरि के रहने वाले हो। ये भी जानते हैं कि तुम यहां से राजगिरि बार बार जाते हो, आते हो। ये भी जानते हैं क्योंकि तुम बार बार आते जाते हो तो ये रास्ता भी खूब जानते हो। महाराज, जो मुझे जानता है वो इन सारी बातों को जानता है। उनमें से कोई कोई तो आता होगा तेरे पास पूछने के लिए कि यहां से राजगिरि तक का रास्ता कैसा है, मुझे जाना है भाई। तो तुम छिपाते हो कि बता देते हो? क्या छिपाने की बात है महाराज, खूब समझा देता हूं। यूं पूरब की ओर चलते जाना, चलते जाना, यहां मुड़ना वहां मुड़ना, फिर वाराणसी आएगी, आगे चलना और आगे यहां मुड़ना वहां मुड़ना, गया आ जाएगी, उससे आगे फिर यहां मुड़ना वहां मुड़ना, राजगिरि आ जाएगी। खूब समझा देता हूं। तो जो जो तुमसे पूछा वो तो पहुंच गए होंगे ना? कैसे पहुंच जाएंगे, कुछ चलेगा तो पहुंच जाएगा। अरे यही तो मैं कहता हूं, ये इतने लोग मेरे पास आते हैं इसलिए आते हैं, इस आदमी को मुक्त अवस्था तक का रास्ता खूब मालूम है क्योंकि स्वयं चला है। तो मुझसे पूछने आते हैं, मैं बताता हूं ऐसा रास्ता है, ऐसा रास्ता है। अब रास्ता हमने बता दिया, कोई चले ही नहीं तो कैसे पहुंच जाएगा रे? कोई एक कदम चला तो एक कदम नजदीक पहुंच गया, 10 कदम चला 10 कदम नजदीक पहुंच गया, 100 कदम चला 100, सारा रास्ता जितने माप लिया वो तो पहुंच गया। चलना होता है, हर आदमी को स्वयं चलना होता है। तुम्हें ही के चंगा तपंग अखा तारो तथागत, कोई तथागत होगा तो केवल रास्ता बताएगा, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। ये बात जितनी जल्दी समझ ले उतना कल्याण हो जाए।
शुक्रिया गुरु जी, अपने आप को सुधारने की बात आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई। दर्शकों, इसी बात पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ऊर्जा में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपसे हमें जो प्रश्न प्राप्त हुए हैं वो अभी हम गुरुजी से पूछेंगे। गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं रमन जी चंडीगढ़ से। वो पूछते हैं कि रमजान पर्व के बारे में आपके क्या विचार है?
अच्छा पर्व है, जैसे मनाना चाहिए वैसे मनाए, तो बहुत पवित्र पर्व है। क्या रमजान होता है, क्या रोजा होता है, अपने आप को कंट्रोल करना है, सब्र करना है, संवर करना है, संयम करना है। तो महीने भर तक अपनी भूख पर कंट्रोल करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल तो सारे जीवन भर का होना चाहिए। और केवल भूख पर ही कंट्रोल वाली बात नहीं है, हर क्षेत्र में कंट्रोल हो। आंखों का कंट्रोल हो कि आंख कोई गंदी चीजों को नहीं देखे, वाणी पर कंट्रोल हो कोई गंदी बात नहीं करे, कान पर कंट्रोल हो कोई गंदी बात नहीं सुने, कंट्रोल होना चाहिए। तो ये कंट्रोल करने के लिए एक प्रैक्टिस है, मन को वश में करे और फिर सारी इंद्रियों को वश में करे, तो ये सब्र है, ये सब्र है, ये कंट्रोल है, ये रमजान का महत्व है, ये रोजे का महत्व है। ये कोई समझे ही नहीं और दिन भर भूखा रहा और अब यही मन में लगा रहे कब शाम हो, कब खाने को मिले, और अब खाने को तो ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, तो बात नहीं समझ में आई, कंट्रोल ठीक से नहीं हुआ, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। समझाने वालों ने समझाया, एक बड़ा मुस्लिम संत हुआ, फकीर हुआ, फरीद नाम का। उस फरीद संत ने कहा, फरीदा जय तू अकल लतीफ काले लिखना लेख। अगर तेरे में अकल है और ठीक अकल है तो तू काले लेख मत लिखना, यानी अपने मन पर कालीमान मत ले आना। बार बार तू कालीमान इसलिए लाता है कि तुझे पता नहीं तू कर क्या रहा है। तो आपन रे गिरिबान मही और सिर नवाए कर देख, अपने गिरिबान में माने अपने आंचल में देख, तेरे भीतर क्या है अपने भीतर देख, तो होश आ जाएगा। किसी संप्रदाय का व्यक्ति हो, जिस दिन अपने आप को देखना शुरू कर दिया उस दिन सारी बातें समझ में आ जाएगी। मेरे अंदर ये खोट है, मुझे ये खोट निकालना है, मेरे अंदर ये खोट है, मैं इस प्रकार निकाल सकता हूं, काम बन गया। एक और मुस्लिम संत ने कहा, यही बात कही, हाशम तिन्हा और रब पछाता जिन्हा अपना आप पछाता। अपने आप को पहचान लिया, यानी अपने बारे में जो सच्चाई है उसे जान गया, अनुभूति से जान गया, अरे उसने परमात्मा को जान लिया, रब को जान लिया, खुदा को जान लिया, सच्चाई को जान लिया, तो वो करने के लिए अपने भीतर सच्चाई को देखकर कंट्रोल करे और सारे इंद्रियों पर कंट्रोल करे तो रोजा रोजा है, कल्याण की बात है, रमजान रमजान है, कल्याण की बात है। जब आदमी भीतर की सच्चाई को नहीं देखता तो ऊपर ऊपर का दिखावा करके लोगों को ठगना चाहता है। मैं देख कैसा संत हूं, कैसा फकीर हूं, मैं कैसा हूं। भगवान बुद्ध ने भी समझाया, अरे भाई केवल सिर मुंडा लेने से तुम श्रमण नहीं हो गए, जटा बढ़ा लेने से तुम सन्यासी नहीं हो गए, भीतर से अपने आप को सुधारो। हमारे यहाँ के सभी महापुरुषों ने, हमारे यहाँ के सभी ज्ञानियों ने यह बात कही। आदि शंकराचार्य ने भी कहा कि जो सिर मुंडाता है, कि जटा रखता है, कि भेष बदलता है, किस लिए? उदर निमित्तं बाहुकृतवेशं, उदर निमित्तं पेट के लिए बाहुकृतवेशं, भिन्न भिन्न प्रकार के भेष बनाता है पेट भरने के लिए। तो ये आडंबर जब तक चलता है तब तक धर्म छिपा हुआ रहता है। आडंबर दूर हो, जो बात सही है वैसे सामने आए तो लोक कल्याण हो।
आपने हमें रमजान का महत्व समझाया, शुक्रिया गुरुजी। गुरुजी अगला प्रश्न पूछ रही है कीर्ति महाजन जी पुणे से। वो पूछती है कि कर्म किसे कहते हैं?
बेटी कर्म शरीर के भी होते हैं, वाणी के भी होते हैं, मन के भी होते हैं, लेकिन जो फल देने वाले कर्म है, जिसमें कर्म का बीज समाया हुआ है, वो मन का है। मन जब प्रतिक्रिया करता है तो कर्म संस्कार बनाया। मन का वो हिस्सा, चौथा हिस्सा जो संस्कार है, वो जब प्रतिक्रिया करता है तो कर्म बना। अच्छा कर्म भी बना सकता है, बुरा कर्म भी बना सकता है। हम सजग रहेंगे तो बुरा कर्म नहीं बनाएंगे, अच्छा कर्म बनाएंगे। तो मन की हर प्रतिक्रिया एक कर्म बनाती है।
शुक्रिया गुरुजी, आपने हमें कर्म के बारे में समझाया। गुरुजी आज का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए आपका अपना प्रोग्राम ऊर्जा। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, ऊर्जा में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मन के विषय में कुछ जानकारी पाई, ये जाना कि मन में कितनी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं, जिनका उपयोग हम नहीं करते। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण होता है। हमें किसी बाहर की शक्ति पर आशा न रखकर खुद ही मुक्ति की राह पर चलना चाहिए। हम ही हमारे कर्मों के जिम्मेदार होते हैं और कोई नहीं। परंतु संतों की वाणी हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने में मदद करती है। तो चलिए आज हमारे गुरुजी से पूछते हैं कि उन पर किन किन संतों का प्रभाव रहा है। गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम माता जी। गुरुजी आज हम आपके निजी जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि आप पर किन किन संतों का प्रभाव रहा है।
अनेक संतों का प्रभाव रहा बेटी। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि बर्मा में मांडले शहर में 9 वर्ष की उम्र से 16 वर्ष की उम्र तक वहां के खालसा स्कूल में अध्ययन किया। जितने टीचर थे सब सिख थे, तो बहुत गहरा प्रभाव पड़ा खालसा पंथ का, उन सदगुरुओं का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पहले गुरु श्री नानक देव जी, उनकी वाणी इतनी प्रिय लगती थी क्योंकि वाणी में प्यार ही प्यार, करुणा ही करुणा, सद्भावना ही सद्भावना, सर्वत का भला हो, सबका भला हो। श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में हम देखते हैं उस समय का भारत का इतिहास किस तरह आक्रमण पराक्रमण हुए जा रहे हैं। एक ओर तो उन आक्रमणों का अत्याचार लोगों पर, और दूसरी ओर सारा समाज बिखरा हुआ, टुकड़े टुकड़े हो रहे, जाति में जाति, जाति में जाति, जाति में जाति। अहंकार तो इतना बड़ा कि उस अहंकार के मारे अपने भीतर विकार ही विकार और समाज के भीतर विकार ही विकार। तो करुणा जागती है, सदगुरु में करुणा जागती है। अरे काहे का गर्व कर रहे हो, जाति को गर्व न करी हो कोई, ब्रह्म बंदे तो ब्राह्मण होए। गर्व मत करो अपनी जाति का, तुम तब तक ब्राह्मण नहीं हो जब तक कि ब्रह्मा तुम्हारी वंदना न करने लगे, माने तुम्हारे में इतने गुण आ जाए कि ब्रह्मा भी तुम्हारी वंदना करे। तो ये सारी जात पात को तोड़ने के लिए बहुत आवश्यक था उस समय, सारा समाज बिखरा हुआ। तो हम देखते हैं जो बात गुरु नानक देव जी ने शुरू की वो आगे जाकर के दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी ने उसे और बढ़ावा दिया। देखा उन्होंने कि जब तक समाज एक नहीं होगा तब तक अत्याचारियों का अत्याचार बढ़ते ही जाएगा, उसका सामना कैसे करेंगे। तो एक नया समाज खड़ा किया। तो ये सारे जात पात को तोड़ते हुए दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं अब तुम्हारा नया जन्म होगा, गुरु घर जन्म तुम्हारो होए, पिछली जात वर्ण सब खोए। छोड़ो सारी जाति और वर्ण को, अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है और गुरु के घर में हुआ है। चार वर्ण के एको भाई, अब चार वर्ण नहीं है, अब सब एक हो गए। धर्म खालसा पदवी पाई, ऐसा स्थापित किया समाज को कि ये वर्णों का झगड़ा, जाति का झगड़ा, गोत्र का झगड़ा दूर हो, सब एक बराबर हैं, सब एक बराबर हैं। मानुष्य की जाति सब एक कर पहचानिए। अरे मनुष्य मनुष्य में क्या फर्क है, किसको ऊंचा किसी को नीचा क्यों मानते हो। ये सारी बातों ने मन को बड़ा प्रफुल्लित किया, ऐसे लोग तैयार किए दशमेश गुरु ने। प्रथमेश गुरु ने भी यही स्टार्ट किया था, नानक देव जी ने भी यही किया, और दशमेश पर आते आते तो ऐसा कि लोगों में कैसे पवित्रता भरें, अपने शिष्यों में कैसे पवित्रता भरें, उनको खालसा बनाया। खालसा माने खालसा शब्द का अर्थ है पवित्र है, कि पूर्ण ज्योत जगे मन में तो खालिस ताहि निखालिस कहिए। तो खालिस होगा तो पवित्र होगा, अंदर ज्योत जगे, धर्म की ज्योत जगे। जात पात के सारे जंजाल को तोड़ करके दुनिया को एक नया संदेश देता है यह दशमेश गुरु। जात पात का कोई भेदभाव नहीं, पांच को चुना, उन पांच प्यारे शिष्यों को, शिष्य उसके फिर हाथ जोड़ करके उनको गुरु मानता है, उनसे अमृत चखता है। जात पात का भेदभाव नहीं, और ये दुनिया में पहली बात हुई कि कोई गुरु अपने शिष्यों को गुरु मानता है और उनसे अमृत चखता है। तो ये सारी जात पात तोड़ने के लिए सारी बात, ये देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। और फिर वाणी, सारी की सारी वाणी विपश्यना से इतनी मेल खाए कि मन पर उसका बहुत गहरा प्रभाव, जैसे जैसे विपश्यना में आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे बहुत बड़ा प्रभाव। नानक देव जी कहते हैं बाहर भीतर एको सच है, यह गुरु ज्ञान जताई रे, जन नानक बिन आपा चीने, कठिन भ्रम की इकाई रे। प्रश्न है, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारे मन पर पड़ा।
शुक्रिया गुरुजी। आपके जीवन में संतों का कैसा प्रभाव रहा है ये आपने हमें अभी बताया। आपसे बातचीत जारी रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में। गुरुजी, सिख परंपरा एक खास लिबास के कारण और अन्य कई कारणों से एक अलग तरीके से उभर कर आती है, इस विषय पर कुछ बताएंगे?
ये बहुत आवश्यक था बेटी, बड़े प्रैक्टिकल थे जो गुरु थे, खास करके दशमेश गुरु। दो काम करने थे उनको, एक तो ये जात पात के टुकड़े तोड़ करके एक करना था और दूसरे अपने समाज को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए एक सेना तैयार करनी थी, बहादुरों की सेना। कैसे बहादुर? जो अंदर से संत हों, निर्मल चित्त हों, फिर भी बहादुर हों, तो ऐसे बहादुरों की सेना तैयार करनी थी। तो खालसा सेना तैयार की, अपने प्राणों से ज्यादा प्यारे, खालसा मेरा प्राणों का प्राण, खालसा मेरा संत सुजान। संत हैं फिर भी सैनिक हैं, सैनिक तैयार किए। तो पांच कक्के दिए, पहला कक्का दिया केश, न सिर के बाल काटो, न मूछ के, न दाढ़ी के। ये किस लिए? कि उस अपीयरेंस का व्यक्ति इस जाति का है कि उस जाति का? कोई लेन देन नहीं, खालसा है। और सेना तैयार करनी है ना, तो सेना का यूनिफॉर्म होता है, तो और यूनिफॉर्म हो ना हो, चेहरे का यूनिफॉर्म तो है, दूर से मालूम हो कोई देखे ये खालसा सैनिक है, तो इसलिए केस दिया। दूसरा कक्का दिया कंघा, ये कठिनाई होती है, जब सिर के बाल मत काटो, दाढ़ी मत काटो, मूछ मत काटो, तो कोई जटाधारी होगा लोग समझेंगे तो साधु है, सन्यासी है। साधु सन्यासी नहीं बनाने थे, गृहस्थों को तैयार करना था। तो अपने बालों को कंघे से साफ रखो, जटा जैसी नहीं, खूब सुलझा के रखो। तो ये कंघा दिया। बाकी तो सेना तैयार करनी है ना। तो तीसरा कक्का कृपाण दिया, तलवार दी हाथ में, कोई हम पर आक्रमण न कर सके, तलवार हाथ में दी, कृपाण दी। आप कोई सैनिक है, हाथ में उसके अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, तो एक नशा आ जाता है उस ताकत का, उस शक्ति का, कभी दुराचार कर सकता है, खासकर महिलाओं पर दुराचार कर सकता है। तो चौथा कक्का दिया कच्छा, भीतर कच्छा पहनो, माने संयम के लिए, ये संयम है तुम्हारा। फिर पांचवा कक्का दिया हाथ में लोहे का कड़ा, हथकड़ी है ये, जब जब तलवार उठाओ, कृपाण उठाओ, तो ये सामने आए, ये कड़ा हाथ में आए, अरे किस पर उठा रहा हूं मैं? किसी निरपराध व्यक्ति पर तो नहीं उठा रहा, किसी अबला पर तो ये तलवार नहीं उठा रहा मैं, किसी बालक पर तो नहीं उठा रहा। ये तलवार उठेगी तो ऐसे ही लोगों पर जो अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, तो ये कड़ा हमें इसे चेतावनी देने के लिए। तो ये पांच का कह दिए। तो ऐसी सेना तैयार की जो अंदर से पवित्र है और लेकिन फिर बलवान है, रक्षक हैं। तो आज तक वो परंपरा चली आ रही, अच्छी बात है। ऐसी परंपरा जो चलाई गई वो इसी ख्याल से चलाई गई कि बाहर का आक्रमण न हो, कोई हम पर अत्याचार न कर सके। तो एक बात चली, राज करेगा खालसा और आकी रहे न कोई। जिस दिन खालसा राज करने लगे, खालसा माने पवित्र चित्त वाले लोग जब राज करेंगे, बलवान भी हैं, भीतर से पवित्र भी हैं, तो आकी रहे न कोई, कोई आक्रमणकारी नहीं होगा, हिम्मत नहीं करेगा कोई आक्रमणकारी, और कोई आक्रांत नहीं होगा, आकुल नहीं होगा, व्याकुल नहीं होगा, बाहर के आक्रमण बंद हो जाएंगे। ये एक आदर्श खड़ा किया, तो अवश्य हमारे मन में उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा।
गुरुजी, आपने अभी हमें पांच निशानियों का महत्व समझाया। गुरुजी, मैंने सुना है कि नानक देव जी कर्म कांडों के बारे में लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाते थे, उस विषय में कुछ बताएंगे?
अवश्य बेटी,
धर्म का एक बहुत बड़ा दुश्मन होता है ये जो मिथ्या कर्मकांड होते हैं, निर्जीव निष्प्राण कर्मकांड होते हैं। भगवान बुद्ध ने भी यही किया, जहाँ जहाँ मिथ्या कर्मकांड थे उनको दूर किया और धर्म को शुद्ध रूप में स्थापित किया। हम देखते हैं कि गुरु नानक देव जी के मन में भी यही थी कि कैसे भी धर्म शुद्ध रूप में आए और ये मिथ्या कर्मकांड ये दूर हो। तो केवल एक घटना बताता हूँ, कई है उनके जीवन की घटनाएं। एक घटना, हरिद्वार गए, हर की पेड़ी पर देखते हैं लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं, वहाँ तक तो ठीक, और फिर हाथ में अंजलि लेकर के सूरज भगवान की ओर अर्घ चढ़ा रहे हैं। देखते रहे, फिर खुद चले गए पानी में, उन्होंने भी अंजलि भरी। सब सूरज भगवान को अंजलि से जल चढ़ा रहे हैं पूरब की ओर, सूरज पूरब की ओर था, इन्होंने पश्चिम की ओर मुंह फेरा और वहाँ अंजलि से अर्घ चढ़ाया। लोग देखते रहे कि क्या हो गया, ये बूढ़ा सठिया गया, सूरज तो पश्चिम है, पूरब में है, ये पश्चिम में पानी चढ़ा रहा है, बाबा आप क्या कर रहे हैं, पूरब में है सूरज। हाँ भाई, आप सूरज को पानी चढ़ा रहे हैं, मेरे खेत तो पश्चिम में है, मुझको अपने खेतों को पानी देना है, तो मैं खेतों को पानी देने के लिए पश्चिम में अंजलि भर करके पानी छोड़ रहा हूँ। लोग हंसे कि अजीब पागल है, तुम्हारा यहाँ पानी छोड़ा हुआ तुम्हारे खेत तक पहुंचेगा? तो बड़े प्यार से समझाते हैं, अगर तेरा पानी सूरज तक चला जाता है तो मेरा पानी खेत तक क्यों नहीं जाएगा रे, तेरा सूरज तो और ज्यादा दूर है। प्यार से एक बात समझाई जाए, लोगों को होश आता है। कर्मकांड जो केवल थोथे हैं, अपने आप उनको लोग छोड़ने लगते हैं, सही रास्ते आते हैं।
शुक्रिया गुरु जी, ये तो बड़ी प्यारी घटना सुनाई आपने। गुरु जी आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन इसी बात पर हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का ऊर्जा में स्वागत है। गुरुजी अभी आपने हमें पश्चिम की ओर पानी देने वाली घटना सुनाई, ऐसी कुछ और घटनाएं सुनाएंगे?
बहुत घटनाएं हैं उन संत के जीवन में, उनके लिए कोई जात पात का जैसे भेद नहीं था, वैसे संप्रदाय का भेद नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है। जहां कहीं गलत बातें हैं बड़े प्यार से उसको सुधारने का काम करते थे। एक बार अपने साथी मर्दाना के साथ चले गए मक्का मदीना, और वहाँ किसी रात को कहीं सोए तो उनका पांव काबा की तरफ था, तो कोई आया कहता है कि तुम कैसे आदमी हो, वो तो खुदा का स्थान है, उस पर पांव करके सोए हो। तो मुस्कराए, भाई मुझे तो नहीं मालूम कि वहाँ खुदा का स्थान है, तो तुम मेरे पांव को उस तरफ कर दो जहाँ खुदा का स्थान ना हो, जहाँ खुदा ना हो उस तरफ मेरे पांव कर दो, मैं तो वहां सो जाऊंगा, पांव उस तरफ कर लूंगा। अब क्या जवाब दे, तो खुदा तो सब जगह है, ईश्वर तो सब जगह है, परम सत्य तो सब जगह है। तो यूं प्यार से समझाते थे कोई बात, किसी को चोट भी न लगे और बात भी समझ में आ जाए। संत थे, और न जाने कितने जन्मों से संत रहे, तो बचपन से ही चित्त में प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। जब बहुत छोटे थे तो पिता ने एक बार खेत में भेज दिया, खेत है तो चिड़िया आती है खाने के लिए, दाना चुग जाती है, खेत का नुकसान हो जाता है। तो खेत का मालिक एक मचान बनाता है, उस पर कोई आदमी बैठ करके चिड़ियों का झुंड आए तो पत्थर मार के उनको उड़ाता है। तो इसे बैठाया कि आज ये काम तू कर, जब जब चिड़िया आए तो ये पत्थर फेंक करके उनको उड़ा दिया कर। बैठ गया, चिड़िया का झुंड आया, देखता हूं उनकी ओर, अरे बेचारे ये तो कोई खेती करते नहीं, इनको तो ये खाने को अनाज मिलेगा और मैं इनको उड़ा दूं, कैसे पत्थर फेंकूं इनकी ओर, इनका पेट भरना चाहिए ना, इनका पेट। अरे करुणा जागती है, तो गाता है, हर जी की चिड़िया हर जी का खेत, खा मेरी चिड़िया भर भर पेट, हर जी की चिड़िया हर जी का खेत। प्यार है, अभी बालक है, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, बचपन से मालूम होता है कि आगे जाके बहुत बड़ा संत बनेगा। विरक्ति है भीतर, चिपकाव नहीं है, जाने कितने जन्मों से चला आ रहा है। ये एक संत के लक्षण होते हैं कि जिसमें अंदर चिपकाव नहीं होता, सबके प्रति प्यार होता है और वो प्यार उनके जीवन में अनेक घटनाओं में इसी तरह से घटा, प्यार ही प्यार घटता चला गया। संत थे, ज्ञानी भी थे, लोगों में धर्म फैले, सही रूप से फैले।
शुक्रिया गुरुजी, इन घटनाओं द्वारा आपने हमें गुरु नानक जी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। गुरुजी, इस वक्त हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक, तो दर्शकों मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो ऊर्जा में। दर्शकों, हमारा ये सेक्शन आप ही के प्रश्नों पर आधारित है। तो गुरुजी, पहला प्रश्न पूछ रहे हैं आनंद जी मुंबई से। वो पूछते हैं कि कोई किसी को श्राप दे तो वो कितनी हद तक सच हो सकता है?
बिल्कुल सच नहीं होता बेटी। कौवों के श्राप देने से हाथी थोड़ी मर जाएगा। ये श्राप देने वाले जो हैं, हानि उसकी हुई, उसको डेफिनेटली हानि हुई, क्योंकि श्राप देते वक्त उसके चित्त की चेतना कैसी है, क्रोध से भरा हुआ, द्वेष से भरा हुआ, दुर्भावना से भरा हुआ, वो जो चेतना जगा रहा है उससे वो दुख पाएगा अभी भी और आगे भी। जिसको श्राप दिया गया, हो सकता है उसकी कोई हानि ना हो और हो सकता है उसकी थोड़ी हानि हो श्राप की वजह से। नहीं, अगर वो घबरा गया कि अरे मुझे श्राप मिल गया, न जाने मेरा क्या हो जाएगा, न जाने मेरा क्या हो जाएगा, तो उस घबराहट के मारे वो दुखी है, श्राप के लिए नहीं, घबराहट के मारे। कोई समझदार आदमी है, अरे कोई श्राप दे तो क्या हुआ, मैंने कोई बुरा काम थोड़ी किया, देता रहे ये क्रोध के मारे देता है, द्वेष के मारे देता है, कुछ नहीं बिगड़ा उसका। तो जिसको श्राप दिया गया उसका कुछ नहीं बिगड़े, अगर उसने गलती घबराहट की तो उस घबराहट का दोष मिले। श्राप देने वाले को तो दोष ही दोष है, क्योंकि मन में विकार जगा करके श्राप दे रहा है।
शुक्रिया गुरुजी, आपने बहुत अच्छा समझाया। गुरुजी, दूसरा प्रश्न पूछ रही है प्रीति जी पुणे से। वो पूछती है कि क्या वरदान या आशीर्वाद का कोई फल नहीं होता?
अवश्य होता है बेटी। जैसे श्राप देने का दुष्फल श्राप देने वाले को भुगतना पड़ता है, ऐसे वरदान देने वाले का, आशीर्वाद देने वाला का सत्फल, अच्छा फल आशीर्वाद देने वाले को। चित्त की चेतना क्या है? जिस वक्त आशीर्वाद देता है, किसी को कहता है तेरा भला हो, तेरा मंगल हो, तो उसका चित्त प्यार से भरा हुआ है, मैत्री से भरा है, करुणा से भरा है, सद्भावना से भरा है, तो जैसे चित्त की चेतना वैसा उसको फल मिलेगा। तो जैसे श्राप देने वाले को श्राप दिया है इसलिए दुख भोगना पड़े, वरदान देने वाले को दुख नहीं भोगना पड़े, सुख बहुत सुख मिलेगा। और जिसको वरदान दिया गया उसको भी कोई दुख नहीं, तो दोनों ओर से शुभ ही शुभ है, किसी का कोई नुकसान नहीं।
गुरुजी, आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। प्रणाम गुरुजी।
सुखी हो बेटी।
प्रणाम। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय देखना ना भूलिए आपका अपना शो ऊर्जा। नमस्कार।